तो ये अध्याय का नाम है सामान्य भक्ति, सामान्य भक्ति, ईस्टर्न सेक्शन, पूर्वी विभाग, भक्ति रसामृत सिंधु। और पिछली बार हम लोगों ने, आपको याद होगा कि इस भक्ति रसामृत सिंधु का जो परिभाषा सूत्र है उसके बारे में हमने चर्चा किया था, और पहले हमने इसका स्वरूप लक्षण बताया था और उसके बाद तटस्थ लक्षण बताया था। याद है आप उस श्लोक, याद है कौन सा श्लोक है जिसका हमने स्वरूप लक्षण भी बताया और तटस्थ लक्षण भी बताया? हाँ जी, आपने दूर क्यों बैठे, वहाँ कौन है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रोत्तमा। इसका जो वो है ना बास, उसको कम करिए, बास बास लिखा ना जिसमें, उसको आप कम कर दिए। तो अब हम आगे इस अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला अध्याय है और अध्याय का नाम है, इंग्लिश में टाइटल दिया है श्रील प्रभुपाद ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है, सो दीज आर द वर्सेस बिटवीन 13-43। भक्ति रसामृत सिंधु में 13वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक इसकी चर्चा की गई है। प्रभुपाद का विशेष योगदान है कि उन्होंने इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को बहुत ही सरल रूप से इसको प्रस्तुत कर दिया, नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में। अगर आप सीधे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना, खासकर जिनको कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी का अगर बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए तो बहुत ही टफ होगा। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने भी और अन्य आचार्यों ने इस ग्रंथ के ऊपर टीकाएं लिखी और श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत सरल तरीके से हमें प्रस्तुत किया है और जिसे कोई भी भक्त पढ़ के अच्छी तरह समझ सकता है। तो ये जो आगे हम लोग चल रहे हैं, ये जो श्लोक हमने लिया था पिछली बार जिसमें हमने बताया था शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हम लोगों ने पिछली बार इसका सामान्य रूप से इसकी परिभाषा दी थी हमने, आपको याद है? नहीं याद है? पिछली बार हम लोगों ने दिया था इसके बारे में, आपको संक्षिप्त इसका वर्णन किया था। और आगे ये श्लोक है, क्लेशाग्नि सुविधा मोक्ष लघुताग्र सुदुर्लभा साधारण विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ट्रांसलेशन, द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्ति आर इट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय सफरिंग, इट्स बेस्टोल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इट्स डिसरिगार्ड फॉर लिबरेशन, इट्स रेयरिटी ऑफ अटेनमेंट, इट्स मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस एंड इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट कृष्ण। सो दीज आर बेसिकली द 6 characteristics ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, and these 6 characteristics of pure devotional service can be divided in 3 parts. Bhakti 3 prakar ki hoti hai, kaun kaun si hoti hai 3 prakar ki bhakti, kaun bataya 3 prakar ki bhakti kaun si hai?
Ek karma mishrit bhakti, gyan mishrit bhakti aur shuddh bhakti, pure devotional
service.
Haan, sadhan bhakti, bhav bhakti aur prem bhakti. ठीक है, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं अभी? उसमें भी कौन सी भक्ति? वैधी साधन भक्ति। हाँ, साधन क्रिया कर रहे हैं, सिर्फ वैधी साधन क्रिया कर रहे हैं। साधन भक्ति में हम लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं? वैधी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि राग मार्ग में भी साधना होती है तो उसको क्या कहते हैं? रागानुगम साधन भक्ति कहते हैं। और जो हम भक्ति कर रहे हैं वो क्या है? वैधी साधन। तो ये साइंस है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, जो श्री गुरु गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में एक्सप्लेन किया है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का साइंस एक्सप्लेन किया। तो जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहा है, अनुशीलन कर रहा है, उसको इस विज्ञान से अवगत होना चाहिए। वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है क्या, इको क्यों आ रहा है कमरे की वजह से? ये तो खिड़की भी बंद हो गई, इस वजह से ज्यादा इको आ रहा लगता। तो यहाँ पे जो 6 लक्षण बताए हैं उसमें जो पहले 2 लक्षण हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। फर्स्ट है क्लेशाग्नि, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। नेटर डिवोशन में पेज नंबर 3 में ये मेंशन किया है ना, पेज नंबर 3 में दिया है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर थ्री में दिया है श्री क्लेशाग्नि के लिए प्रभुपाद ने ट्रांसलेट दिया, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, लिखा है ना, हाँ, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, लिखा है कि नहीं, आप सबको थोड़ा जागना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस, व्हाट, इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम व्हाट, मटेरियल डिस्ट्रेस, क्लेशाग्नि, हाँ, तो क्लेशाग्नि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ये बहुत एलैबोरेट डिस्कशन है और इसे समझने के लिए काफी हमें अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखते हैं क्लेश रिफर्स टू डिस्ट्रेस एंड द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस, सो क्लेश रिफर्स टू डिस्ट्रेस एंड कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस, क्लेश का मतलब क्लेश दुख, और क्लेश का मतलब क्लेश दुख और दुख का कारण, तो दुख के तीन कारण हैं, क्लेश के तीन कारण हैं, तीन कारण से क्लेश होता है, क्लेश बोलते ना, क्लेश चल रहा है हमारे घर में, क्लेश चल रहा है, क्लैश चल रहा है और क्लेश चल रहा है, इंग्लिश में क्लैश कर दिया और हिंदी में क्लेश हो गया, संस्कृत में क्लेश, तो संस्कृत से ये सारे शब्द आ रहे हैं, अंग्रेजी में भी है ना, क्लेश से क्लैश हो गया, उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इंग्लिश, तो क्लेश तीन कारण से होता है, पाप, और दूसरा है बीज, और तीसरा है अविद्या, ठीक है ना, पाप, बीज और अविद्या, पाप का मतलब क्या है, सिन, और बीज का मतलब सिंपल डिजायर, सिंपल डिजायर है तो आप पाप करें, और पाप करेंगे तो सिंपल डिजायर बढ़ेगी, सिंपल डिजायर बढ़ेगा तो और पाप करेंगे, और पाप करेंगे तो और सिंपल डिजायर बढ़ेगा, तो ये साइकिल है, ये चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता, इसलिए अगर खत्म करना है तो सिंपल डिजायर को खत्म करना है, तो डिजायर को हमें एक्टिवेट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना है, उसको सक्रिय नहीं बनाना है, इसको निष्क्रिय रखना है, तो पहले जो ये दो लक्षण बताए हैं क्लेशाग्नि और शुभदा, ये साधन भक्ति की अवस्था में ये शुभ लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, हमें दुखों से छुटकारा मिलता है, और दूसरा क्या होता है, शुभदा, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि जब सब क्लेश मिट गए तो फिर उसका रिजल्ट क्या है, शुभदा, और भाव भक्ति की अवस्था में और दो लक्षण प्रकट होते हैं, पहले दो लक्षण तो है ही, और दो लक्षण प्रकट होते हैं, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कि भाव भक्ति बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलेगी भाव भक्ति की अवस्था में, सब नहीं पहुंच पाते इतनी आसानी से, बहुत दुर्लभ है, और क्या है, मोक्ष भी बड़ा तुच्छ लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है, मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष लघुता कृत, लघु मतलब बहुत छोटा, इनसिग्निफिकेंट, और उसके बाद प्रेम भक्ति के दो लक्षण और बताए गए हैं श्री रूप गोस्वामी के द्वारा, सांदरानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकृष्ण, ये प्रेम भक्ति के दो लक्षण, तो प्रेम भक्ति में टोटल कितने लक्षण हुए, प्रेम भक्ति में टोटल कितने लक्षण है, छह लक्षण है, दो तो है ही उससे पहले और चार भी है, और भाव भक्ति में कितने लक्षण है, भाव भक्ति में कितने लक्षण है, भाव भक्ति में चार लक्षण, और साधन भक्ति में दो लक्षण, तीन कहां से आ गए, आपने तीन बोला, साधन भक्ति में दो लक्षण, तो टोटल मिला के प्रेम भक्ति के छह लक्षण, हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं अभी, हाँ, और ये किस भक्ति का लक्षण है, साधन भक्ति का लक्षण, तो क्लेशाग्नि की हम चर्चा करेंगे आज, तो पहला यहां पर टॉपिक डिस्कस किया गया है, इट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय ऑल सफरिंग, दैट विल बी डिस्कस्ड, सिंफुल एक्शंस प्रोड्यूस टू रिएक्शंस, जो पाप कार्य है वो दो प्रकार के उसमें रिएक्शन होते हैं, क्या, एक तो व्यक्त और एक अव्यक्त, इसको जो व्यक्त हो जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, और जो अव्यक्त होता है उसको अप्रारब्ध कहते हैं। जैसे कई लोगों ने यहां चश्मा लगाया, ये प्रारब्ध है ना, ये प्रारब्ध एक पाप का फल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। किसी के पेट में दर्द है, किसी पीठ में दर्द है, ये सब क्या है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध कहते हैं। अब प्रारब्ध मतलब आपको पता नहीं, आपने पाप तो किया है, आपने सोचा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, मैं तो पाप करने लगे लाइम एंजॉइंग, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप प्रारब्ध अवस्था में है, वो फल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले जन्म में उसका फल मिलेगा, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। मैनिफेस्ट नहीं हुआ जो, विच आर नॉट मैनिफेस्टेड, इट इज अनमैनिफेस्टेड। जो रिएक्शन है वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट पे है, अव्यक्त अवस्था में है पाप का फल, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। इसके एक समझ लीजिए, पिछले साल किसी ने चावल डाला, एक बैरल होता है ना, जैसे गांव में बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, तो बैरल में उसने अच्छा चावल डाला, और उसके बाद इस साल उसने नया चावल डाला उसी में, इस साल डालेगा क्या डाला, अच्छा चावल नहीं डाला, पिछले साल अच्छा चावल डाला। जब प्लग आउट किया तो कौन सा चावल निकलेगा,
अच्छा चावल पिछले साल
डाला, लेकिन उसने तो बुरा किया, बुरा चावल डाला था, खराब चावल डाला था, लेकिन अच्छा चावल मिला, तो पहले डाला वही तो निकलेगा ना। तो इसी तरह से कुछ प्रारब्ध जो है जब व्यक्त हो जाते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है ना, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, जब सेमिनार करते हैं ना तो उसके लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत बड़े सरल तरीके से समझाने के लिए बताते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शास्त्र की बात की जा रही है, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर अवर सिंफुल एक्टिविटीज वी आर वेटिंग डिस्ट्रेस इन फ्यूचर, एंड फॉर अदर्स विच आर मेच्योर वी आर सफरिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। एक्टिव डिवोशन पेज नंबर 4 में श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। A disease caught early is curable, but is far more difficult to eradicate if allowed to become chronic. बीमारी अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो इलाज जल्दी हो जाता है, बीमारी अगर नहीं पकड़ी गई जल्दी तो फिर क्या होता है, वो बीमारी क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है,
क्रॉनिक हो जाती है। इसी तरह से जब एक पाप का फल हम लोग भुगतने लगते हैं या पाप का फल व्यक्त होने लग जाता है, तो उस समय उससे बचना, उसको नष्ट करना, उसको समाप्त करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं बात, एक बार जैसे चश्मा लग गया तो दोबारा फिर अगर आप चाहते हैं आंखों में तेज रोशनी आए तो आसान काम नहीं है, मुश्किल है कि नहीं। तो ये मटेरियल एडजस्टमेंट है बट क्योर नहीं है। डिवोशनल सर्विस हाउ एवर कैन रिमूव इवन मैनिफेस्ट सिंफुल रिएक्शंस अलॉन्ग विद द सफरिंग दे ब्रिंग। लेकिन भक्ति में इतना प्रभाव है, शुद्ध भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि प्रारब्ध को भी काट देता है, प्रारब्ध भी समाप्त हो जाते हैं इससे। यहाँ पर इन्होंने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से लिया हुआ है, तृतीय स्कंद से क्या लिया है, to say nothing of the spiritual advancement of persons who see the supreme person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the supreme personality of Godhead or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances or even remembers him. So shravan kirtan karta hai, bhagwan ki leelaon ka shravan kirtan karta hai, bhagwat bhakti mein lagta hai, एक बार भी अगर श्री हरि नाम का उच्चारण करता है तो क्या होता है, वो योग्य बन जाता है, यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो इतना प्रभाव ये प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है, चंडाल मले चियावण भी जो है वो भगवत भक्ति में लग जाता है। और प्रभुपाद ने इसको तो करके दिखाया, ये तो शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, ये भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा है।
लेकिन प्रभुपाद ने तो उसको करके दिखा दिया कि ये संभव है। इसलिए आज हम देखते हैं चाइना से भी डिवोटीज आ रहे हैं। चाइना शास्त्र के अकॉर्डिंग चंडाल देश, कोरिया, चाइना, लेकिन वहां भी भक्त है। कैसे बन रहे भक्त? तो यानी कि उनके प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं। नाम का आभास जब होता है तो प्रारब्ध कट जाता है। नाम का जो आभास होता है, शुद्ध नाम का आभास जब होता है तो हमारे प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। और बता रहे कि उसके बाद अगर फिर कष्ट मिलता है, उसके बाद भी कष्ट मिलता है, तो वो जो है कर्म के कारण नहीं है, वो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। वो कष्ट भगवान के द्वारा दिया जाता है भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। और सुख मिलता है वो तो भक्ति के द्वारा मिलता है। जो आनंद प्राप्त होता है वो भक्ति के द्वारा ही आनंद प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब कष्ट मिलता है, प्रारब्ध कट जाने के बाद भी अगर कष्ट मिलता है, तो ये भगवान के द्वारा दिया जाता है। भगवान स्वयं ये कष्ट देते हैं उस भक्त को भक्ति में और परिपक्व करने के लिए। अस्याहम अनुग्रणामी हरिष्ये तद्धनम शनै। क्या कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसका मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता हूं, धन छीन लेता हूं, संपत्ति छीन लेता हूं। फिर उसके अपने ही स्वजन, उसके अपने रिश्तेदार मित्र उसे दूर भागने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये कृष्ण की कृपा होती है। तो ये कर्म का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद कहते हैं माइक्रो डिवोशन पेज नंबर 5 में, ब्लेजिंग फायर कैन बर्न एनी अमाउंट ऑफ फ्यूल टू एशेस, सो डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, टू द लॉर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बर्न अप ऑल द फ्यूल ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। कितना भी फ्यूल हो सबको जला के राख कर देगा अगर हम लोग भगवत भक्ति में लगते हैं तो। आप प्रारब्ध कष्ट कैसे देते हैं हमें? पाप के जो कार्य हैं वो दो प्रकार के अपराध प्रकट करते हैं, एक तो डायरेक्ट फिजिकल लेवल पर और दूसरा इमोशनल लेवल पे, और दूसरा जो है वास्तव में इनडायरेक्ट सफरिंग मिलता है बाय इंक्रीजिंग अवर सिंफुल प्रोक्लिविटीज। कोई अगर अवैध संबंध में स्थापित होता है तो फिजिकल और इमोशनल सफरिंग दोनों प्रकार का होता है। और अपने पहले जैसे बताया, जिस तरह से पाप की इच्छाएं बढ़ती हैं, पाप कार्य भी बढ़ते हैं, और पाप कार्य अगर बढ़ते हैं तो पाप की इच्छाएं भी और बढ़ती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने पाप की इच्छाओं को, पाप करने की जो इच्छा है उसको, उस इच्छा को पूरा करने का क्या नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। और कैसे हम इस प्रयास को रोक पाएंगे, किस माध्यम से हम इस प्रयास को रोक पाएंगे? भक्ति के द्वारा, भजन क्रिया के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा हम ये जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की इच्छा है लेकिन उसको हम लोग एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं अपने सिंफुल डिजायर्स को। सो वी आर कंट्रोलिंग अवर सिंफुल डिजायर्स। तो इसमें क्या होगा, देन वी कैन कम आउट ऑफ द साइकिल। साइकिल ऑफ अनमैनिफेस्ट रिएक्शन गोज थ्रू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस से ये अप्रारब्ध जो फल है निकलते हैं। ये पद्म पुराण में दिया गया है। पद्म पुराण से ये श्लोक यहां पर श्री रूप गोस्वामी ने उदित किया है। दिस इज द वर्ड्स फ्रॉम पद्म पुराण। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो मुखम क्रमणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। For those engaged in bhakti to Vishnu, step by step the aprarab, koot, beech and prarab karmas are destroyed. जो भक्ति में लगे हैं धीरे धीरे क्या होता है, क्रमशः धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं, अपरारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध सब नष्ट हो जाते हैं। तो अपरारब्ध हमने पहले बताया आपको क्या है, कूट का मतलब क्या है, 4 स्टेजेस बताए यहां पर। तो वॉट डू मीन बाई कूट, बताया कूट का मतलब क्या है। बेसिकली कूट एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन है, आपका मानसिक जो विचार है पाप करने का, मनोवैज्ञानिक विचार, साइकोलॉजिकल जो डिस्पोजिशन है पाप करने का, उसको हम लोग कूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कूट का, क्या दिखा देखिए, पहले इसको हम थियोरेटिकली समझते हैं फिर एग्जाम्पल देंगे आप। जहां समझ आए तो पीछे पूछिए आप। फिर तीसरा है बीज, बीज का मतलब सिंपल डिजायर, पाप करने की इच्छा को बीज कहते हैं। तो उसमें बेसिकली एक स्पेसिफिक डिजायर होता है पाप करने के लिए, कि मैं चोरी करना चाहता हूं, मैं शराब पीना चाहता हूं, मैं जुआ खेलना चाहता हूं, इस तरह से पाप करने की इच्छा होती है, स्पेसिफिक आपका एक डिजायर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब अब आपने वो पाप कर दिया और कुछ समय के बाद उसका आपको फल प्राप्त हो रहा है। सिंफुल डिजायर कॉजेज अस टू कमिट अ सिंफुल एक्शन, जैसे कि हमने पता है पाप करने की इच्छा से आपको, आप पाप करते हैं और उसका रिएक्शन मिलता है। समझ लीजिए पाप किया किसी ने और एक व्यक्ति उसके लिए डिस्टाइन है कि वो चोर बनेगा, चोर बनेगा और दंडित भी होगा, जो उसके भाग्य में लिखा है कि चोर बनेगा और दंडित भी होगा, लेकिन ये अभी तक उसको रिएक्शन मिला नहीं। चोरी की उसने लेकिन अभी पकड़े नहीं गए, रिएक्शन नहीं मिला, तो ये जो रिएक्शन नहीं मिला अगले जन्म में मिलेगा, चोरी की लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, तो यानी कि वो क्या है, अपरारब्ध अवस्था है, अभी उसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। और उसके अगले जन्म में क्या होता है, ये फल जो है व्यक्त होने लगता है और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जागृत होती है, नेचुरल प्रोक्लिविटी, जन्म लेते ही उसके अंदर एक नेचुरल इंक्लिनेशन जागृत होता है चोरी के प्रति। सो चोरी की नहीं, अभी अगले जन्म में भी वो चोरी करेगा ना, इस जन्म में चोरी की पकड़ा नहीं गया, अगले जन्म में जन्म लेते ही उसके अंदर एक स्वाभाविक लक्षण है चोरी करने का, बचपन से ही जेब से पैसा निकालता है, किसी ना किसी को झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं धोखा देता है, कई लोगों का नेचुरल होता है, आपने देखा होगा बचपन से ही चोरी करने की इच्छा होती है, किसी घर गए वहां पर तोड़ दिया कुछ, पत्थर लेके शीशा मार दिया कि तोड़ दिया, है ना, किसी घर चले गए वहां से कुछ उठा के लिया है, तो बचपन से ये नेचुरल इंक्लिनेशन है किसका, चोरी करने का। तो जो नेचुरल इंक्लिनेशन है इस प्रकार से, उसको क्या कहते हैं, कूट कहते हैं, कूट स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप करने की जो है उसको कूट कहा जाता है। और यही जब इंटेंसिफाई हो जाता है, ये तो एक स्वाभाविक सामान्य रूप से एक प्रवृत्ति बताई गई कि कभी धोखा देता है, कभी झूठ बोलता है, कभी कुछ चुरा लेता है, कभी कुछ करता है, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक डिजायर होता है कि आज मैं इसके घर डाका डालूंगा, पैसा निकालूंगा यहां से, या बैंक में डाका डालूंगा कि वहां जाके पीऊंगा मैं पार्टी में जाके, स्पेसिफिक डिजायर जब उसके अंदर बन जाता है और डिजायर बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और जाकर उस इच्छा को पूरा करने का जो पूरा प्रयास करता है उसको कहते हैं बीज, उसको क्या कहते हैं। और इस तरह से जो इच्छा जब उसकी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है, प्रबल हो जाती है, उस इच्छा को लेकर जब वो पाप करता है और उसका फल भुगतता है, यानी कि वो फिर व्यक्ति जो पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, जो कि इस जो साइकिल पिछले जन्म से चल रहा है, हाँ, जो पकड़ा जाता है, तो फिर क्या होता है उसको क्या कहेंगे, प्रारब्ध। तो इस साइकिल को इस तरह से हम समझ सकते। लेकिन अभी वो पकड़ा गया, पकड़ा गया वो, लेकिन क्या उसकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हुई, जेल से छूट गया, सरकार ने तो उसको सजा दे दी, उसने दान भी किया, तपस्या भी किया, यहां पर लिखा है रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं और अन्य आचार्यों ने टीकाओं में लिखा है कि पाप तो दान से, योग से या अन्य साधनों से भी जो है नष्ट हो जाता है ना, गंगा जी में स्नान कर लिया किसी ने समझ लो, या गोदान कर दिया, या ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों की सेवा कर दी, ऐसे में क्या होता है, पाप नष्ट हो गए, जो पाप किया था आपने वो पाप नष्ट हो गए, लेकिन जो पाप करने की जो इच्छा है इसको बीज कहते हैं वो नष्ट नहीं हुआ। यानी कि जेल से छूटने के बाद भी उसके अंदर अभी भी उसके हृदय में कहीं ना कहीं उसके अंदर पाप करने की इच्छा है कि नहीं इच्छा? तो वो इच्छा कौन नष्ट कर सकता है, ये प्रश्न है। वो इच्छा कौन नष्ट कर सकता है? भक्ति के द्वारा। साधु संघ भी भक्ति का एक अंग ही है, और उसमें जब श्रवण कीर्तन करने लगते हैं तो वो फिर क्या लिखा था, जैसे हमने क्या बताया था, क्रमणेव प्रलयते, कि धीरे धीरे क्या होता है, क्रमशः क्या होता है, वो फिर पाप का बीज भी जो है वो नष्ट हो जाता है, जो इच्छा है पाप करने की वो भी समाप्त हो जाती है। तो प्रारंभ में जब भक्त दीक्षित होते हैं, चार नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है गुरु के द्वारा, तो उस समय जो चार नियम है इसका बड़ा सख्ती से हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो ये बाधा बहुत बड़ी बाधा बन जाती है भक्ति। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि हम अपनी श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर फेथ। प्रभुपाद कहते हैं, बाई फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वी कैन इंक्रीज आवर फेथ एंड डिटर्मिनेशन। तो कई बार भक्तों में फेथ कम हो जाता है, डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, एंथुसियाज्म कम हो जाता है, उसका कारण एक ये भी है कि हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर रहे। तो जितना रिजिड हम रहेंगे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में, हमारा जो इंटरनल जो डिटर्मिनेशन है, आंतरिक जो दृढ़ता है, वो हमारी प्रबल होती जाएगी। वही बात में हम दोबारा दोहरा रहे कि जो पाप करने की जो इच्छा है उसको हमें पूरा नहीं करना, उसको सेटिस्फाई नहीं करना है। तो देयरफॉर वी आर सपोज टू कंट्रोल द अर्जेस, दैट्स व्हाट श्रील रूप गोस्वामी सेइंग इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिगिनिंग द फर्स्ट वर्स, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर प्रस्थ वेगम एतान वेगान ये विषय तदीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वी सदिश्या। तो ये क्यों बोल रहे हैं श्री गोस्वामी, ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि वेग तो रहेंगे लेकिन वेगों को सहन करना पड़ेगा। तो वेगों को जो सहन कर लेगा वो पाप करने की इच्छा को पूरा नहीं करेगा, और जब पाप करने की इच्छा पूरी होगी नहीं और श्रवण कीर्तन चलता रहेगा, गुरु की सेवा चलती रहेगी, वैष्णव की सेवा चलती रहेगी, तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति फिर बढ़ने लग जाती है। अच्छा, इसके बाद भी अगर हम कष्ट पाते हैं, मान लीजिए प्रारब्ध भी आपका नष्ट हो गया, प्रारब्ध भी अगर नष्ट हो जाता मान लीजिए आपका, और उसके बाद हम कहते हैं कि कृष्ण की कृपा है, अगर कोई कष्ट मिलता है, मान लो अगर कृष्ण की कृपा नहीं है तो और कौन सा कारण हो सकता है कष्ट का, बताइए, और कोई कारण हो सकता है कष्ट का? अपराध। और कष्ट का कारण क्या हो सकता है? अपराध। और यहां तो श्री रूप गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से, और आचार्य की टीका है इसमें तो स्पष्ट रूप से बताया है कि वैश्य अपराध के कारण भी फिर कष्ट होता है, वैश्य अपराध के कारण भी फिर हमें क्लेश होता हमारे मन में, वो कृष्ण की कृपा नहीं है, वैसा अपराध कृष्ण की कृपा नहीं है, ये हमारी अपनी ही कृपा है ना, किसी वैष्णव के ऊपर हमने कृपा कर दी इसके चरणों में अपराध करके, या और अन्य अपराध भी है जैसे नाम अपराध, सेवा अपराध, इन अपराधों से हमें बचना पड़ेगा, और खास तौर से वैष्णव अपराध से बचना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये बताया हमने, इसलिए बताया कि किस प्रकार हम लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें। पाप के बारे में यहां बताया है, जैसे हमने बताया पहले कि तीन कारण है क्लेश के, पहला हमने बताया पाप, पाप के चार स्टेजेस आपको बताया हमने, दूसरा हम आपको और बताने जा रहे हैं बीच के बारे में, इच्छा के बारे में, मेटीरियल डिजायर, तो भौतिक इच्छाएं हैं, क्योंकि भौतिक इच्छाएं जो है हमें पाप करने में मजबूर करती है। अच्छा, आपको बताया भगवद गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि कम हम लोग दृढ़ता पूर्वक भजन कर पाएंगे, एशाम तो अंधकृतम पापाम जना नाम पुण्य कर्मणा, और क्या है, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते मां दृढ़ता। तो दृढ़ व्रत होकर हम तभी भजन कर पाएंगे जब हमारे सब प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाए, पिछले जन्म के भी, इस जन्म के भी। यानी कि ये बाधा है अच्छा पाप तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपराध है वो जल्दी नष्ट नहीं होते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कि अपराध जो है लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है पाप से। पापी व्यक्ति हरिनाम ले सकता है, ले सकता है कि नहीं? पापी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? जैसे अमेरिका में हिप्पीज ने किया, भक्ति शुरू की, प्रभुपाद की कृपा से श्रवण कीर्तन शुरू किया, अजामिल ने शुरू कर दिया, वो पापी था, किया था कि नहीं अजामिल ने? लेकिन अजामिल ने एक चीज नहीं किया, अजामिल लिखिए उसको जो नामाभास हुआ वो उसको श्रद्धा नामाभास नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसको कोई रियल नामाभास हुआ कि वो भगवान का स्मरण कर रहा था और उसको शुद्ध नाम का आभास हो गया और एकदम बैकुंठ चला गया हो। अजामिल को क्या हुआ बताइए? अजामिल को जो आभास हुआ नाम का, उस नामाभास को कहते हैं संकेत नामाभास। नामाभास कई प्रकार के होते हैं, शेला नामाभास, परिहास नामाभास, स्तोभ नामाभास, और इसको कहते हैं संकेत नामाभास। और संकेत नामाभास का मतलब है कि संकेत उसका जो था उनका था अपने बच्चे की ओर। वो अपने बालक को नारायण बुला रहे थे, नारायण नाम दिया था, अपने आखिरी बच्चे का नाम उन्होंने नारायण दिया था। तो नारायण बुलाया जब उन्होंने, तो अपने बच्चे को पुकार रहे थे, भगवान को नहीं पुकारा उन्होंने। तो लेकिन नाम क्योंकि भगवान का था इसलिए नाम आभास हो गया। इस नामाभास का नाम है नाम आभास। और हमारे आचार्य लोग श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि ऐसा नामाभास भी अगर होता है, अगर इसके बाद अपराध नहीं करता व्यक्ति, तो ऐसा नामाभास भी आपको शुद्ध नाम में ले जाएगा जल्द ही, और उसके द्वारा आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। मतलब ऐसे नामाभास से भी आप शुद्ध नाम की तरफ जा सकते हैं अगर बीच में अपराध ना हो तो। अगर अपराध हो जाता है तो फिर से वापस द्वारा आपकी गाड़ी फिर से शुरू होगी। होता यही अक्सर, जैसे हम लोग कई बार मंदिर में आए, पहली बार जब आए, या संकीर्तन में जब पहली बार भाग लिए, सड़क में कहीं कीर्तन चल रहा था, रथ यात्रा में हम लोग अचानक देखा जगन्नाथ जी को, खूब खुशी से आनंद से हम लोग नाचने लगे, कूदने लगे, और मंदिर में आरती के दौरान हम खूब नाचे रविवार के दिन, और काफी देर नाचे, रथ यात्रा के दौरान भी नाचे, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद फिर हमारा नाचना कूदना बंद हो गया। पहले जैसे आनंद नहीं आने लगा। इसका मतलब क्या है कि नामाभास की स्थिति में हम लोग ज्यादा समय तक नहीं रह पाए थे, कुछ अपराध होने लगे, इसलिए फिर कभी अपराध हो रहा है, कभी आभास हो रहा है, कभी अपराध हो रहा है, कभी आभास हो रहा है। लेकिन अजामिल के केस में क्या हुआ कि हालांकि उनको संकेत नामाभास हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके बाद, अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया, वैसा अपराध तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो विष्णु दूतों का बड़ा अच्छा स्वागत किया। विष्णु दूतों को देखकर वो खुश हुए, यम दूतों को देखकर डरे, और आगे आगे उनको जीवन मिला तो विष्णु दूतों का उन्होंने धन्यवाद किया, और हरिद्वार में जाकर फिर उन्होंने भजन किया, और भले उन्होंने इतना अच्छा किया बिना अपराध के, नाम रहित, अपराध रहित, और इस कारण से क्या हुआ, हरिद्वार से वो कहां चले गए, वैकुंठ चले गए। पहले हरि के द्वार गए और वहां से विष्णु दूत आए, वही विष्णु दूत आकर उनको वैकुंठ लेके चले। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए इस बात को, कि कोई भी नामाभास हो, किसी प्रकार का नामाभास भी आपको शुद्ध नाम की तरफ ले जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम लोग अपराध नहीं करते हैं। खास तौर से वैश्य अपराध बड़ा भयानक है, नाम अपराधी अपराध नहीं होना चाहिए, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैश्य अपराध से बचना चाहिए, नहीं तो इनसे भी जो है क्लेश होते हैं, कष्ट होता है, और ये अपराध हमें और अनर्थ देते हैं, जिसके बारे में हम लोग माधुरी अकादमी में चर्चा कर चुके हैं पहले। अपराध उत्थ अनर्थ, याद है आपको, भक्ति उत्थ अनर्थ, अपराध उत्थ अनर्थ, डिस्कस किया था, याद है नहीं? याद है। तो वो नाना प्रकार के जो अनर्थ है अपराधों के द्वारा भी फिर पैदा होते हैं, और ज्यादा फिर भक्ति में बाधा आने लगती है, इसलिए काफी समय लग जाता है फिर भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हम सोचते रह जाते हैं कि क्यों हम नहीं भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इस कारण से भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि पहले जो थे अनर्थ थे पापों के कारण थे, उसको कहते हैं दुष्कृत उत अनर्थ, और एक है सुकृत उत अनर्थ। हमने कुछ दुष्कृति की उसके अनर्थ है, कुछ सुकृति की अच्छे कर्म किए थे उसके भी अनर्थ है, अच्छे कर्मों के भी अनर्थ होते हैं, पता है वो, कि आपको अच्छा स्टेटस मिल गया, सोशल स्टेटस मिल गया, खूब पैसा मिल गया, भक्ति नहीं कर पा रहे, इतने बिजी हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतना ऐश्वर्य धन है आपके पास, इतनी इतना पैसा है, तो आपको लगता है कि मंदिर जाने की आवश्यकता है, और भक्ति करते भी हैं तो आपको फिर ठाट बाट भी चाहिए उसके हिसाब से, उस प्रकार का यश भी चाहिए। आप चाहेंगे कि लोग मुझे राजा की तरह स्वागत भी करें जब मंदिर जाओ, क्योंकि आप राजमहल से आ रहे हैं। तो इस कारण से अमीर व्यक्ति के लिए, धनी व्यक्ति के लिए भक्ति करना बड़ा कठिन होता है इस कारण से। तो ये भी एक अनर्थ है, और फिर अपराध उत्तर अनर्थ है, फिर भक्ति से उत्पन्न हुए अनर्थ है, भक्ति उत्तर अनर्थ। तो ये सारे अनर्थ एक्स्ट्रा है, और पहले अनर्थ जो थे वो भी है ना। तो फिर इसलिए इन अनर्थों से बचने में बड़ा काफी समय लग जाता है, क्योंकि अपराधों के कारण हुआ है, पाप के कारण हुआ है वो जल्दी कट जाएगा, लेकिन अपराधों के कारण जो होता है उसमें कई बार कई जन्म लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज नंबर 6 में इसके बारे में डिस्कस किया है, अजामिल के बारे में। लेटर सिंपल डिवोशन सर्विस ऑफ चैंटिंग नारायण अपरूटेड ऑल हिज कैलामिटीज ऑल्दो ही वाज इन द मिडस्ट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। कितना पाप किया था अजामिल ने, और भक्ति का भी कोई विचार नहीं था अजामिल का। जगाई मधाई की भी ये हालत थी, जगाई मधाई ने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा, नवदीप में जितने पाप थे, जितने पाप वो कर सकते थे नवदीप, उन्होंने किए, सब किया उन्होंने। इसलिए उनके जो यमराज जी के जो ट्रेजरर थे, मतलब जो उनके सेक्रेटरी थे चित्रगुप्त, वो भी परेशान हो गए। वो बोलते अब तो कुछ गुप्त रहा ही नहीं, इतने मैंने चित्र ले लिए, मेरा नाम तो है चित्रगुप्त लेकिन कुछ भी नहीं रहा गुप्त। क्योंकि यहां पर जगह बधाई के जो पाप के ढेर इतने बढ़ गए हैं कि अब मेरे पास जगह नहीं रखने के लिए, खाते भी हो गए लुप्त, लाखों सेक्रेटरी है वो बेचारे लिखते लिखते परेशान हो गए, थक गए, सुपर कंप्यूटर्स नहीं था उनके पास, बड़े परेशान हो गए, क्या करें हम यमराज महाराज, क्या करें हम तो लिखते लिखते परेशान हो गए। लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, महाप्रभु की कृपा हुई, सारा कागज खुला हो गया, वो लिखा हुआ सब मिट गया। यमराज जी को बोलते हैं, कुबेर जी आके बोलते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, जो भी मैंने लिखा सारा मिट गया। तो यमराज जी भी हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है कि ब्रह्मांड में किसी जीव की शक्ति नहीं है जो किसी के पाप को नष्ट कर सके हमारे होते हुए, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। और बाद में जैसे पता चला, जब उन्होंने देखा कि नवदीप में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है, तो यमराज जी जो है भावेश में नृत्य कीर्तन करने लगे। यमराज जी को देखकर शिवजी भी बिगड़े, वो हो गए आश्चर्यचकित हो गए, कहा क्या हो गया आपको, तो यमराज जी ने बताया ऐसे ऐसी घटना हुई है, महाप्रभु की कृपा हुई है जगाई मधाई के ऊपर, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है, तो महादेव भी नृत्य करने लगे। तो ये समझने वाली बात है। यहां पे लिखते हैं वैदिक रिचुअल सजेस्ट चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी कैन यूटिलाइज सिंफुल रिएक्शंस बट दे कैन नॉट यूटिलाइज सिंफुल डिजायर्स। तो ये हमने पहले बताया था कि पाप का फल जो है वो तो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो पाप करने की इच्छा है वो बनी रहती है। इसलिए प्रभुपाद ने यहां पर उदाहरण दिया है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज नंबर 7 में। अ पर्सन मे बी क्योर्ड ऑफ वेनेरियल डिजीज बाय एक्सेप्टिंग अ पेनफुल मेडिकल ट्रीटमेंट बट बिकॉज सेक्स डिजायर रिमेन्स इन हिज हार्ट ही अगेन इंप्लिकेट्स हिमसेल्फ इन सफरिंग। सेकंड नंबर, एन एलिफेंट मे बेथ केयरफुली इन अ लेक बट अपॉन रिटर्निंग टू लैंड इमीडिएटली कवर्स हिमसेल्फ अगेन विद डर्ट। आती इसलिए है सुखदेव गोस्वामी ने से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया भागवत के छठे स्कंध में कि लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, प्रायश्चित करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है पाप तो नष्ट हो जाता है लेकिन दोबारा पाप करने की इच्छा बनी रहती है और फिर दोबारा पाप करते हैं। ये तो हाथी के स्नान के बराबर है, कुछ जरा शौचवत हाथी भी स्नान करता है और फिर जाके अपने शरीर में मिट्टी डाल लेता है, तो क्या फायदा ऐसे स्नान का। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है अजामिल की कथा सुनाते, हरि नाम की महिमा बताते हैं कि जब तक जीव भगवत भक्ति में नहीं लगेगा तब तक पाप करने की इच्छा तो नष्ट हो ही नहीं सकती, असंभव है। ना तपस्या के द्वारा, ना दान के द्वारा, ना योग के द्वारा, ना और किसी भी विधि के द्वारा जो है संभव नहीं है। कर्माणि निर्दहति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं ब्रह्म संहिता। केवल भक्ति के माध्यम से ही हम लोग कर्म के मतलब जो पाप का, जो पाप करने की जो इच्छा है उसको नष्ट कर सकते हैं। पाप करने की इच्छा केवल भक्ति से ही हो सकती है। अब है तीसरा कारण है क्लेश का। पहला कारण क्या बताया था हमने? पाप। और दूसरा कारण क्या बताया? बीज। और तीसरा कारण क्या बता रहे हैं? अविद्या। क्या बताते हैं नरोत्तमदास ठाकुर गुरु वंदना में? प्रेमा भक्ति जावते अविद्या विनाश आ जाता। तो अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या है कि हम सोचते हैं हम भोगता है, और विद्या क्या है? चिबेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। जब ये ज्ञात हो जाता है कि हम लोग नित्य दास हैं श्री कृष्ण के, तो वास्तविक स्वरूप है हमारा, दैट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, दैट इज विद्या, कोई ज्ञान है। अज्ञानता क्या है? हम सोचते हैं कि आई एम द बॉस, आई एम द मास्टर, आई एम द प्रोप्राइटर। एंड यू सी दैट कृष्ण इज द प्रोप्राइटर, ही इज एंजॉय भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम्स, डेमिगॉड्स। वो उससे क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? शांति प्राप्त होती है, ज्ञापता वाम शांति मृक्षते, और वही सूर्य है सबके। तो ये विद्या है। ओनली डिवोशनल सर्विस कैन अप्रूव ऑल इग्नोरेंस, केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही यह विद्या नष्ट होती है। श्रील रूप गोस्वामी कोट करते हैं पद्म पुराण से और श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध से, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध से क्या लिखते हैं? The devotees by access of service to the toes or the lotus feet of the Lord can very easily overcome the knot of ignorance carrying unlimited impressions of karma tied tightly by action. Because this is very difficult, the empty-minded non-devotees, jnanis and yogis, although trying to stop the flow of sense activities, cannot do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudev. इस तरह से जी गोस्वामी की भी आवृत्ति का लिखी हुई है। जी गोस्वामी की टीका में इन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का यहाँ पर वर्णन किया है। श्रृणवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विद्रोति सुहर्षताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चये चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया शीयते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत के, बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, क्षमा करिए सुखदेव गोस्वामी कह रहा हूँ, सुध गोस्वामी बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं इसमें भक्ति के अलग अलग स्टेजेस बता रहे हैं, जिसका हमने वर्णन माधुरी कादंबनी के सेक्शन में किया था, आपको शायद याद है, पता नहीं मुझे। हरे कृष्ण। तो यहां पर देखिए, यहां लिखते हैं कि श्रवणताम से कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो क्या है श्रवण कीर्तन? क्या है? भजन क्रिया है। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विद्रोति सुर सतान, यह क्या है? अनर्थ निवृत्ति है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। प्राय अभद्र दूर होते हैं जब हम भागवत व्यक्ति और भागवत पुस्तक की सेवा करते हैं। भगवत भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नैष्ठी की, उसके बाद क्या होता है? निष्ठा की स्थिति में आते हैं, नैष्ठी की भक्ति की प्राप्ति होती है। और उसके बाद लिखा तदा रजस तमो भावा काम लोभदाय चेत इधर नाविदं स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, मतलब रजोगुण और तमोगुण शांत हो जाता है और हृदय में सत्वगुण स्थापित हो जाता है और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, यानी कि शुद्ध सत्व प्रवेश करता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? रुचि और आसक्ति की स्थिति है। और उसके बाद आगे जैसे बताया है एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, ये भाव की अवस्था है इन द मोड ऑफ अनलॉयड गुडनेस। the man's mind has been enlivened by contact with the devotional service of the Lord, gains positive scientific knowledge of the personality of God in the state of liberation from all material association. और इस तरह से क्या होता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, यानी कि भाव की अवस्था पहुंच गए और प्रेम की अवस्था पहुंच गया, भाव मतलब प्रेम जागृत हो गया आपका, तो फिर क्या हो गया, अविद्या नष्ट हो गया। भागवत के श्लोकों में स्पष्ट वर्णन किया गया है, इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि श्रीमद् भागवत के श्लोकों में आप भक्ति रसाम सिंधु पाएंगे, भागवत में भक्ति रसाम सिंधु आप देख सकते हैं, या भक्ति रसाम सिंधु का आप अध्ययन जब करेंगे तो श्रीमद् भागवतम वहां मौजूद है, ये एक दूसरे से अभिन्न है, ठीक है। भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और हमें भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ के माध्यम से, भक्ति रसाम सिंधु ग्रंथ के माध्यम से और दृष्टिकोण से ही श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह भी एक और मतलब है समझने का। या फिर श्री चैतन्यचरितामृत, चैतन्यचरितामृत जो ग्रंथ है उसके माध्यम से भी हमें भक्ति श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष दिया है, कंक्लूशन दिया है और समझाया गया है कि कैसे हम लोग शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुंच सकते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से अभी हमने समझने का प्रयास किया, तो यह अविद्या इस प्रकार से नष्ट होती है। कोई कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है डिवोशनल सर्विस इरेडिकेट सिंफुल रिएक्शंस, नलिफाई सिंफुल डिजायर्स, काउंट्रैक्ट्स मेटीरियल प्रोक्लिविटीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्रूव्स इग्नोरेंस अविद्या। देयरफॉर इट इज द ओनली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे टू अचीव परमानेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। क्लेश अग्नि, इसको कहते हैं क्लेश अग्नि, तो क्लेश जो है वो जलकर राख होगी, जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, टाइम क्या है,
8:45।
इसके करने से क्या होगा, ऑस्पिशियसनेस होगा, ऑल ऑस्पिशियसनेस। इसलिए शुद्ध भक्ति का फिर दूसरा लक्षण भी प्रकट हो जाता है, शुभदा। जब आपका पाप नष्ट हो गया, बीज नष्ट हो गया, अविद्या नष्ट हो गई, तो फिर क्या होगा, शुभदा होगा। अविद्या का मतलब यह है, यहां तक साधन भक्ति की अवस्था में अविद्या का मतलब यह है, कम से कम यह व्यक्ति जीव समझ जाए कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं। नैष्ठिक की भक्ति का मतलब यह है कि आपको एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मेरा वास्तविक जो स्वरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है, कि मैं दास हूं, दास दासानुदास। तो जब दास दासत्व की आपको अनुभूति हो जाती है तो उसमें तो आप सेवा ही करेंगे, फिर उसमें जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है वो समाप्त हो जाती है, और ये है निष्ठा का लक्षण, निरंतर आप स्थिर रहेंगे, निरंतर आप सेवा में लगे रहेंगे, श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे। ये है मतलब अविद्या का विनाश होने का मतलब, अविद्या दूर होने का मतलब ये है। अविद्या दूर होने का मतलब नहीं, आप ग्रंथ तो पढ़ लिए लेकिन आपको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं दास, तो वो उसका अभी भी अविद्या है। यानी मानसिक स्तर तक आपने शास्त्र तो पढ़ लिया, बुद्धि से तो समझ लिया शास्त्रों को, लेकिन ये अनुभव नहीं किया कि मैं दास हूं, इसका मतलब क्या है कि अविद्या अभी दूर नहीं है। इसे इस बात को एहसास करना, अनुभव करना आवश्यक है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस बात को। तो अविद्या का मतलब यह है, फर्स्ट क्वालिटी आना चाहिए, उसके बाद फिर भाव भक्ति की अवस्था में ये बात और ज्यादा प्रबल हो जाती है, प्रेम भक्ति की अवस्था में ये बात और प्रबल हो जाती है। फिर तो भाव भक्ति की अवस्था में हम सेवा भाव से करते हैं और प्रेम भक्ति की अवस्था में प्रेम से करते हैं, लेकिन साधन भक्ति की अवस्था में हम कम से कम निष्ठा के सर पर होते हैं, भाव भक्ति की अवस्था में हम लोग भाव के लेवल पर होते हैं और प्रेम भक्ति की अवस्था में प्रेम के सर पर होते हैं। शुभदा, शुभदा का मतलब है, जैसे हमने बताया कि ये दो लक्षण हैं, ये जब प्रकट होते हैं, जब भक्ति के हम लोग कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं, साधन भक्ति के कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं, निष्ठा के स्टेज पर पहुंचते हैं। आदव श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा, तो निष्ठा के स्तर पर ये दो लक्षण प्रकट होते हैं, क्लेशाग्नि और शुभदा। अगर ये लक्षण नहीं है, अगर ये सब नहीं हुआ है, तो इसका मतलब निष्ठा के स्तर पर नहीं है, हम भ्रमित रह रहे हैं, हम कहीं भ्रमित ना हो जाए सोच के कि हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच गए हैं, अगर कई बार भ्रमित हो जाते हैं तो ये ग्रंथ खोल के पढ़े। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। साधु संग करने का यही लाभ है कि हमें बार बार एहसास होता है कि अभी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े, अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें लग रहा है कि हम निष्ठा की अवस्था पहुंच गए हैं। और ये भ्रम है, इल्यूशन है, अगर हमें कहीं मन में ये बात अगर मन में ये बात चल रही है तो इस शंका को दूर करने के लिए हमें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो ये लक्षण पता चलेंगे, हम देख सकते हैं ये लक्षण हमारे अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब निष्ठा के सर पर है ही नहीं, तो क्यों हम लोग ढिंडोरे पीट रहे हैं, ढोल हो जा रहे हैं। इसलिए साधु संघ बहुत जरूरी है। साधु संगे सर्वशास्त्र को है, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु क्या करेगा, आपकी इस अविद्या को दूर करेगा, अज्ञानता को दूर करेगा कि आप अभी निष्ठा के स्तर पर नहीं हो, वो एहसास कराएगा कि आप दास हो। इसलिए साधु संग करते हैं हम, क्योंकि वैष्णव के चरणों में जाकर ही साधु संग में ही हम लोगों की अनुभूति हो पाती है कि हम दास हैं, हम मालिक नहीं। योगी ध्यानी जितने लोग हैं ये कोई एहसास ही कर पाते इस बात, क्योंकि वैष्णव की शरणागत नहीं हो पाती। वैष्णव के जो शरण आता है वही व्यक्ति जो है अहंकार से बच सकता है, वही उस बात की अनुभूति कर सकता है कि मैं दास हूं, मालिक नहीं हूं। वैष्णव ये आपको एहसास कराएंगे, आपकी सहायता करेंगे वैष्णव, शास्त्र से सुनाकर आपको सेवा में लगाकर ये एहसास कराएंगे। ये लाभ है साधु संघ का, ये लाभ है इस ग्रंथ का अध्ययन करने का। ये ग्रंथ जो है हमें भक्ति देता है। भक्ति साधु सिंधु ग्रंथ क्या करता है, ये ज्ञान का वर्धन नहीं कर रहा हमारा, ये ग्रंथ पढ़ने से श्री रूप गोस्वामी हमें भक्ति में, भक्ति के राज्य में प्रवेश करा रहे हैं कि भक्ति के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इस अविद्या को दूर करना है। अगर हम भक्ति के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये हमें जान लेना चाहिए कि हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं है, हम प्रभु नहीं है। प्रभु दूसरा व्यक्ति कह रहा है आपको, हम खुद नहीं कह रहे अपने आप को प्रभु, है ना। तो इस बात के लिए हम लोग सचेत रहे। इसलिए हम लोग लगातार जो साधु संग करते हैं तो हम भ्रमित नहीं होंगे। साधु संग की कमी से हम लोग इस भ्रम में कई बार पड़ जाते हैं, कई बार हम लोग प्रचार में इतने मग्न हो जाते हैं हम भूल जाते हैं भक्तों से मिलना, उसमें इस प्रकार का कई बार भ्रम हो जाता है। इसे बार बार जब दोबारा साधु संग होता है फिर हमें दोबारा लाइन में आते हम लोग, है ना, कि जहां थे हम लोग वहां पे ना रहे, वापस आ जाए जहां है, बहुत दूर चले गए हम भक्ति से। तो शुभदा इस बात को अच्छी तरह समझना है, ठीक है। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति, शुभदा का मतलब है इसमें चार प्रकार की क्वालिटीज आती है, चार फोर क्राइटेरिया, मतलब ये शुभदा संभव ही नहीं है जब तक ये चार चीजें ना हो। कौन कौन सी चीजें, ये सबको लाभ पहुंचाने वाली है, बेनिफिट्स एवरीवन, सबको लाभ पहुंचाने वाले। और दूसरा प्योर डिवोशनल सर्विस अट्रैक्ट्स एवरीवन, ये सबको आकर्षित करते हैं, शुद्ध भक्ति सबको आकर्षित करते हैं। इट बेनिफिट्स एवरीवन, अट्रैक्ट्स एवरीवन। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं प्रेम देने के लिए आए थे, और हम देखते हैं कि जैसे वो जंगल में गए यहां तक कि जंगली जानवर भी उनको देखकर आकर्षित हो गए, है कि नहीं। प्रभुपाद जब गए तो वहां पर भी जानवर थे, लोग जानवर की तरह जी रहे थे, तो वो लोग भी प्रभुपाद से आकर्षित हो गए। प्रभुपाद कहते ना मेरे पास तलवार है ना मेरे पास धन है, तो ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तलवार से लोगों को बदला, कुछ लोगों ने धन से बदला, ना मेरे पास धन है ना मेरे पास तलवार है, तो ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं, ये पीस मेरे पास क्यों आ रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद के पास शुद्ध भक्ति है, और शुद्ध भक्ति से प्रभुपाद ने आकर्षित किया। इट अट्रैक्ट एवरीवन, कि हिप्पी भी अट्रैक्ट हो गए प्रभुपाद को देखकर, है कि नहीं। तो यहां पर ही बात बताई जा रही है। और तीसरा यहां पर बताया है प्रोड्यूस गुड क्वालिटीज, सदगुण जागृत होते हैं, बिस्टोस सुपीरियर हैप्पीनेस, सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है इसके द्वारा। शुभदा के चार मतलब है। शुभदा अगर कहते हैं, अगर सबको शुभ हो रहा है, मंगलमय हो रहा है, तो ये चार लक्षण है उसके। ये सबको लाभ पहुंचाने वाली है, सबको आकर्षित करते हैं और अच्छे गुण जागृत हो जाते हैं और सर्वो सुख प्राप्त होते हैं। सबको लाभ पहुंचाने वाले और सबको आकर्षित करते हैं। अब जैसे यूनाइटेड नेशन से प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, पेज नंबर 8 में, प्रोडिव्यूशन प्रभुपाद कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन जो है ना फेलियर है ना, उसने बेनिफिट किया है किसी को और ना ही उसने किसी को अट्रैक्ट किया है। तो केवल नाम के लिए है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है इज ऑल ऑस्पिशियस बिकॉज एवरीवन कैन बी अट्रैक्टेड बाय दिस मूवमेंट एंड एवरीवन कैन फील द रिजल्ट। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी एंड ऑल द ग्रेट आचार्यस, यहां भक्ति रसायन सुंदर में भी श्रील रूप गोस्वामी यही बात कह रहे हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, श्रील जी गोस्वामी भी यही कह रहे हैं यहां पर कमेंट्री में, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है क्या है, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है, इट्स द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। पद्म पुराण से श्लोक कोट करते हुए यहां बताया गया है, पद्म पुराण से श्लोक कोट करते हुए क्या बताया गया है, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी अंडरस्टूड टू बी डूइंग द बेस्ट सर्विस टू द होल वर्ल्ड एंड टू बी प्लीजिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड, पद्म पुराण में लिखा है। देखिए, In addition to human society, he is pleasing even the trees and animals. जो शास्त्रों में पुराणों में दिया गया था प्रभुपाद ने वो सब करके दिखा दिया। जब तक प्रभुपाद ने नहीं किया था तब तक ये शास्त्र की बात थी, लेकिन जब प्रभुपाद ने करके दिखाया तो ये वास्तविकता हो गई कि केवल किताबें बातें नहीं, किताबों की बातें नहीं है, this has practically applied. Because they all so become attracted by such a movement. इसलिए हम देखते हैं कई बार हमारे आंदोलन में, हम देखते हैं कई बार जानवर भी आते हैं, है ना। कई बार ब्रजमंडल परिक्रमा में पूरे परिक्रमा में कुत्ता चल रहा था, इधर नदी मंडल परिक्रमा में भी काफी दो तीन कुत्ते जो चल रहे थे साथ में, काफी दूर थे एक चक्र में। हाँ सर, एक चक्र में हम लोग जब परिक्रमा कर रहे थे एक चक्र काम की, तो वहां पे एक पहले कुत्ता आया, उसके पीछे और दो कुत्ते आ गए, तो हमारे साथ वो परिक्रमा कर रहे थे आखिर तक, हम जा भी जा रहे पीछे पीछे आ रहे थे। कोई भी कारण हो सकता है कि प्रसाद के लिए आ रहे हो, खाने के लिए आ रहे हो, बट दे आर मूविंग विद अस, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भक्त है, वो धामवासी है, असली धामवासी है, नकली नहीं। श्री प्रभुपाद एलेबोरेट्स बाय मेंशनिंग हाउ लॉर्ड चैतन्य अट्रैक्टेड ऑल द एनिमल्स इन द झारखंड फॉरेस्ट एंड इंस्पायर्ड देम टू डांस एंड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, मेडिटेटिंग देम विद सप्लाइम ब्लिस आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिवदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सर्वपरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। और उसके बाद क्या होता है, सब देवताओं के गुण जागृत हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र सवासते सुरा हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई। मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनमें क्या अच्छे गुण हो सकते हैं। हरो भक्त से कुतो महत गुणा, कोई भक्त के उसके अंदर कोई लक्षण हो सकते हैं अच्छे, कोई अच्छे गुण हो सकते हैं, नो गुड क्वालिटीज। सामाजिक दृष्टिकोण से या लौकिक दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन शास्त्रों के दृष्टिकोण से वो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वो देहात्मक बुद्धि में, वो अच्छे गुण कैसे हो सकते हैं उसके अंदर। उसी व्यक्ति को अच्छा माना जाता है जिसके पास क्या है, कृष्ण भावना का ही अनमोल भेंट है, अनुपम भेंट है जिसके पास। तो यहां बता रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति करता है उसके पास सभी देवताओं के गुण आ जाते हैं, लेकिन कई बार से भक्तों को देखकर लगता नहीं शुरू शुरू में, ये देवता है, इसको देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए, नहीं लगेगा तो आप धर्मात्मा नहीं बनेंगे, ऐसा भक्तिराव ठाकुर कहते हैं। भक्तिराव ठाकुर जो एक कमेंट्री लिखी है, उस अभिचे सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो हि सा। अब सुना है श्लोक, नहीं सुना है श्लोक, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी हो अगर वो अनन्य रूप से मेरा भजन कर रहा है तो उसको क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए। अरे दुराचारी है और अनन्य रूप से भजन कर रहा है, ये तो बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो अगर अनन्य रूप से भजन कर रहा है वो दुराचारी कैसे हो गया, बात सही है ना। कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी, उन्होंने एक सभा बुलाई और वो आपस में श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है श्लोक। तो भक्तिवर ठाकुर सपना देख रहे हैं, भक्तिवर ठाकुर क्या देख रहे हैं, वो आकाश में जा रहे हैं और अचानक जो है यमराज जी या कोई कहते हैं वो सवाल है, बोलते देखो भक्तिवर ठाकुर जा रहा है। हाँ ब्रह्मा जी कहते हैं ये भक्तिवर ठाकुर जा रहे हैं, ये शुद्ध भक्त है कृष्ण के, इनसे पूछो ये बताएं इसका अर्थ। तो भक्तिवर ठाकुर सभा में जाते हैं, बोलते हैं श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, या भगवान दोनों बातें बोल रहे हैं, एक तो कह रहे हैं दुराचारी और दूसरा बोल रहे हैं कि जो अनन्य रूप से भजन करता है मेरा, वो अनन्य रूप से कैसे भजन कर सकता है जो दुराचारी है। तो भक्तिवर ठाकुर उत्तर देते हैं, उसके बाद भगवान ने गीता में आगे क्या बोला, श्लोक के अगले श्लोक में क्या बोला, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, है ना, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, है हाँ, शश्वत शांति निगच्छति, मतलब क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका अर्थ, कौन त्या प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, वो जल्द ही धर्मात्मा बनेगा। कौन?
जो मानता है कि
जो मानता है कि ये घटना हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भक्ति में तो लगा हुआ है, ये शुद्ध भक्ति में तो लगा ही हुआ है, शुद्ध भक्त की सेवा कर ही रहा है। दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, मान लीजिए अगर आप कार चलाते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या जीवन भर आप कार चलाना बंद कर देंगे? कई बार एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप में से हुआ कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी कितने लोगों की गाड़ी ठुकी है दिल्ली में, सब दिल्ली में तो नेचुरल है, तो आप गाड़ी चलाते ही नहीं अभी तक चलाते। इसी तरह से अगर कोई भक्ति अगर जारी रखता है, भक्ति कर रहा है, तो ऐसा अगर हम उस व्यक्ति को इस तरह से देखते हैं कि देखो ये शुद्ध भक्त है, किस तरह से भक्ति में लगा हुआ है, इतनी समस्या आने पर भी ये भक्ति में टिका हुआ है, अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हम जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएंगे, भक्ति ठाकुर ये बोलते हैं। तो बोलते वाह ये है इसका अर्थ, ये व्यक्ति ने सही बोला, हमने अच्छा किया इसको बुला ले। तो क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा जो इस प्रकार की विचार रखता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें भेद नहीं करना चाहिए कि कौन शुद्ध भक्त है कौन शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमको सबको इसी तरह से दृष्टिकोण से देखना है कि सभी शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग ये न कि इन प्रकारें कृष्ण की सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में क्या कला थी, वो किसी का अवगुण नहीं देखते थे, किसी में दोष नहीं देखते थे, और किसी में दोष होता भी था तो ये कहते थे कुछ भी हो ये कृष्ण की सेवा तो कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। इस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रशंसा करते थे। ऐसे ही वैष्णव का विचार होता है, वैष्णव इसलिए अच्छाई देकर उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि भक्ति से किसी को निकालना बहुत आसान है, भक्त को निकालना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान की सेवा में भक्तों को लगाना, किसी जीव को लगाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। रामानुजाचार्य थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथा जानते हैं आप, वो जो श्रीरंगपुरम का मंदिर बना रहे थे तो वहां पे कई स्कल्पचर्स शिल्पकारों की आवश्यकता थी, तो उनको मिले नहीं, तो उन्होंने देखा कि पता चला कि चोर है, वो चोर बन गए हैं लेकिन बड़े अच्छे शिल्पकार भी हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उन चोरों को बुलाया, उन्होंने कहा तुम चोरी तो करते हो, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए तुम थोड़ा मंदिर की सेवा कर दो, ये मंदिर में कुछ निर्माण का कार्य है, शिल्पकार का कार्य है, तो आप लोग ही कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आपके लिए हम कर देंगे। तो इस तरह से क्या चोर भी जो है धीरे धीरे भक्त बन गए। तो इसलिए वैष्णव लोग जो है इस प्रकार से, वैष्णव के अंदर एक कला होती है कि वो क्या करते हैं कोयले की खान से हीरा निकालते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बाउरी स्ट्रीट से निकाले वैष्णव, प्रभुपाद ने मायापुर धाम से वैष्णव नहीं निकाले, वृंदावन से वैष्णव नहीं निकाले प्रभुपाद ने, प्रभुपाद ने कहां से वैष्णव निकाले, बाउरी स्ट्रीट न्यूयॉर्क से, जहां ड्रग एडिक्ट्स घूमते रहते हैं, हिपीज घूमते रहते थे उस समय। तो इस प्रकार ये सारे अच्छे भक्त अच्छे लक्षण जागृत हो जाते हैं शुद्ध भक्तों के अंदर। और ये जो अच्छे लक्षण है यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं कि आर्टिफिशियली कोई सोच सकता है कि हठ योग है वो बड़ा ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन हो सकता है आर्टिफिशियली दे में सिट डाउन फॉर सो कॉल मेडिटेशन बट इमीडिएटली आफ्टर देयर योगिक परफॉर्मेंस दे विल एंगेज देमसेल्व्स अगेन इन सच इलिसिट सेक्स लाइफ गैम्बलिंग एंड मेनी अदर नॉन सेंसिकल थिंग्स। पाप करने की प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती है, है ना। कुछ देर के तो प्राणायाम कर रहे हैं और योगासन कर रहे हैं, और लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं फिर से पाप करते हैं। यानी पाप करने की जो इच्छा है वो नष्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए यहां पे इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया जा रहा है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा, केवल भक्ति ही माध्यम है और कोई माध्यम है ही नहीं पाप की इच्छा को नष्ट करने का, बीज को नष्ट करने का। ना ही आधुनिक ज्ञान हठ योग नष्ट कर सकता है। इसलिए केवल जो है अच्छे लक्षण अगर अच्छे गुण पाए जाते हैं किसी में तो केवल कृष्ण भक्तों में, भगवान के भक्तों में पाए जाते हैं, वैष्णव में पाए जाते हैं। और ये सर्वोच्च सुख देने वाला है। तीन प्रकार के सुख है, कौन कौन से तीन प्रकार के सुख है पता है आपको? कौन बताएगा तीन प्रकार के सुख कौन कौन से हैं? नहीं, तीन प्रकार के सुख हैं जो एक होता है सुख प्राप्त होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इंद्र तृप्ति से। कहते स्वर्ग लोग जाने की इच्छा है, किसी को वेस्ट अमेरिका जाने की इच्छा है, डॉलर्स कमाने की इच्छा है, तो उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, सुख उससे यही सुख है, है ना। और दूसरा है जो प्राप्त होता है मुक्ति के द्वारा, मुक्ति के द्वारा सुख प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्मानंद का सुख जो है वो कोई साधारण सुख नहीं है, वो जड़ जगत के सुख से बहुत ज्यादा है, तुलना नहीं की जा सकती है। हम सोच रहे ब्रह्मानंद का सुख ऐसे ही है, नहीं, वो सुख ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं पाया जाता जो ब्रह्मानंद में सुख पाया जाता है, इतना सुख है वहां पर। वो स्वर्ग लोक में भी वो सुख पाया नहीं जाता है, आध्यात्मिक है वो सुख। लेकिन जब भक्ति से उसकी तुलना की जाती है तो उसका कोई स्थान ही नहीं है उसके सामने, है ना। यहां पर क्या बता रहे हैं, Prabhupada says even the pleasure of liberation is not eternal as proven by the Mayavadis who fall down and return to material activities. Page number 11, Extra Devotion में लिखा है, अनादृत युष्मत अंग्रया, यानी कि भगवान के चरण कमलों का जिन्होंने आश्रय नहीं लिया है वो क्या आता है, पतंति अधः, वो गिर जाते हैं। तपस्या करके आर्य कृच्छेन परम परम तथा, वो परम पद की प्राप्ति करते हैं बहुत तपस्या करके, लेकिन वहां से गिर जाते हैं। क्यों? इस कारण से, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है, और इस कारण से जो है ये सुख जो है बहुत तुच्छ लगता है। कैवल्य नरकाय थे, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये जो ब्रह्मांड का सुख है वो नर के समान है हमारे लिए। एकत्व की जो इच्छा है भगवान के साथ या ब्रह्म ज्योति में लीन होना वैष्णवों के लिए क्या है, नरकाय थे, कैवल्यम नरकाय थे, ये नर के समान है। और जो स्वर्णों का सुख है वो क्या है, त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आए थे। त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आए थे का मतलब ये है कि स्वर्ण लोग जहां पर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं वो भक्तों के लिए क्या लगता है, आकाश में फूल के समान। आकाश में फूल देखा है, आकाश में फूल को उगते देखा कभी, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, रजनीगंधा। तो वैष्णव जब स्वर्ण लोग देखते हैं, सब लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो आकाश में फूल के समान है, फैंटोस मगरिया या हवा महल। हवा महल लिखा है, ये जमीन वाला हवा महल नहीं, जयपुर में हवा महल, हवा में महल, बोले ना हवा में महल बना रहे हो क्या। तो ये मतलब कोरी कल्पना है, एक इमेजिनेशन जैसा लगता है, इसको कोई महत्व तो नहीं देते वैष्णव लोग। तो वैष्णव लोग जो है वो महत्व तो देते हैं भगवान के धाम। और सुख एक प्राप्त होता है योग सिद्धियों के द्वारा, कई प्रकार की सिद्धि है, इसकी चर्चा हम लोग करें या अगली बार करेंगे, चलो लंबा हो जाएगा, क्या कर दें, ये काफी लंबी चर्चा है, वैसे टाइम लग जाएगा इसमें। इसमें हम लोग सिद्धियों का नाम बता देते हैं फिर अगली बार चर्चा करें, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, इशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि, कामावश्यकता सिद्धि, ये 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है एक योगी को। और इसे कितना सुख मिलता है इसका तो अंदाजा भी लगा सकते हैं, हम अगली बार चर्चा करेंगे, है ना, कितना सुख मिलता है। क्योंकि श्री रूप गोस्वामी या शुद्ध भक्ति के द्वारा जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे बता रहे हैं कि संसार में कितना सुख है, कहां कहां सुख है। तो हे भक्त, आप इन सुखों में फंस ना जाना, कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जो प्राप्त हुआ आनंद आपको, उसके सामने तो ये सब तुच्छ है। इसलिए षड गोस्वामी अष्टक में क्या लिखा, त्यक्त्वा तु नमशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत। श्रीनिवासाचार्य बोल रहे हैं कि मंडलपति का मतलब मिनिस्टरशिप, बड़ा बड़ा पोस्ट षड गोस्वामी ने क्या किया, त्याग दिया। सनातन गोस्वामी ने, श्रील सनातन गोस्वामी ने, श्रील गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह के राज्य में वो प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो पोस्ट छोड़कर वो क्या आ गए, किसके पास आ गए, महाप्रभु के चरणों में आ गए। भूत्वा दीन क्या है, भूत्वा दीन गणेश करुणया कोपीन कंथाश्रितो, कोपीन और कंथा के आश्रित हो गए ये गोस्वामी लोग, और उन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा पद त्याग दिया। कुछ तो होगा कारण, गोपी भाव साम दाद लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो अंदर कहने का अर्थ यह है कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में इतना प्रेम था उनका कि ये सब तुच्छ लगने लगा उनको। प्रारंभिक अवस्था में ही संसार तुच्छ लगने लगता है कि नहीं, जब आप प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, हरिनाम लेना थोड़ा सा शुरू करते हैं, तो तभी घर में झगड़ा शुरू होता है, तभी ऑफिस में झगड़ा शुरू होता है, रिश्तेदारों में झगड़ा शुरू होता है, पड़ोस में झगड़ा शुरू होता है ना। तो लोग धीरे धीरे आपसे कटते जाते हैं, आप समाज से दूर होते जाते हो, फिर आप इस समाज में आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मृत संघ के समाज में आ जाते हैं। ये शुरू में ही हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था में। तो स्वर्ण भाव की अवस्था में, शुद्ध भक्ति की अवस्था में, या भाव भक्ति की अवस्था में, प्रेम भक्ति की अवस्था में क्या हाल होता होगा बताइए, कोई सोचेगा इस संसार के बारे में? जैसे प्रेम भक्ति के लक्षण में बताया जाता है कि इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है प्रेमी भक्त को, तो जैसे हमें प्रेम भक्ति का आभास नहीं हो रहा अभी, इसी तरह से प्रेमी भक्त को जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन का आभास तक नहीं होता है। बोलते हैं जैसे एक लोहे का, अगर समझ लीजिए एक बर्तन है, मेटल है लोहे का, जैसे पत्थर होता ना, कई बार बहुत बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा होता है स्टोन, इसी तरह से लोहे का समझ लो मान लो, और उसमें से आप जो है सेफ्टी पिन निकालना चाह रहे हैं, उसके अंदर जाएगा अंदर, तो प्रेम भक्ति इतना कंडेंस होता है कि उस व्यक्ति को इंद्र तृप्ति का आभास तक नहीं होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन है क्या, रंच मात्र भी उसका आभास तक नहीं होता है, तो क्यों जाना चाहेगा वापस वो संसार में, असंभव है एकदम। इसलिए गीता भगवान कहते यद गत्वार अनिवर्तन्ते तद् धामा परमम, संभव ही नहीं है कि वो संसार में आएगा दोबारा। तो ये बातों को बड़ा समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए यहां पर इस बात की चर्चा हमने की। तो सिद्धियों की चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है कि हम लोग इस प्रकार के इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति जब प्राप्त होती है तो यहां पर कथन दिए जा रहे हैं दो, प्रहलाद महाराज के द्वारा और शिव जी के द्वारा। शिवजी कहते हैं, माई डियर वाइफ, अ पर्सन हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ एट द लोटस फीट ऑफ गोविंद एंड हू हैज थस डेवलप्ड प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी वेरी इजिली अवॉर्डेड ऑल द परफेक्शन डिजायर्ड बाय द इम्पर्सनलेस एंड बियॉन्ड दिस ही कैन एंजॉय द हैप्पीनेस अचीव्ड बाय द प्योर डिवोटीज। दिस शोज द डिवोशनल सर्विस इंक्लूड्स द हैप्पीनेस ऑफ लिबरेशन। प्रहलाद महाराज सेज, आई रिपीटेडली प्रे अंटू यू टू योर लोटस फीट दैट आई मे सिंपली बिकम स्ट्रॉन्गर इन डिवोशनल सर्विस। आई सिंपली प्रे दैट माई कृष्ण कॉन्शियसनेस मे बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी बिकॉज हैप्पीनेस राइज आउट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डिवोशनल सर्विस इज सो पावरफुल दैट विथ इट वन कैन हैव ऑल द परफेक्शन ऑफ रिलीजियसनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड इवन द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। श्री प्रभुपाद एलाबरेट्स बाय मेंशनिंग द स्टोरी ऑफ खोलवे श्रीधर। खोलवे श्रीधर क्या करते थे, और रात को जोर जोर से कीर्तन करते होते थे, तो आस पड़ोस के लोग जो है बहुत द्वेष करते थे, वो बोलते थे ये पागल तो नहीं हो गया है, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, रात को सोने नहीं देता हमें, रो रहा है, लगता है इसको भूख लगती है, तो लोग खाने के लिए कुछ डाल देते थे बाहर। वो लोग समझ नहीं पाते थे वो क्या है, कृष्ण प्रेम के कारण, भाव के कारण जो है इस प्रकार रो रहे हैं, लेकिन आस पास के पड़ोसी सोचते थे किसको भूख लगती है, रात को चिल्लाता है, पेट में शायद दर्द होता होगा, खाने के लिए वहां छोड़ जाते थे कुछ ना कुछ। तो जो भक्ति में नहीं है वो तो सोच भी नहीं सकते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भक्तों को कितना आनंद मिल रहा है, और आनंद क्यों मिल रहा है उसका आभास तक नहीं कर सकते हैं। वो सोचते हैं लोग क्या हो गया, पागलों की तरह नाच रहे कूद रहे, वो समझ नहीं पाते कारण। जब वो भक्तों को देखते नाचते कूदते हुए उनको लगता है क्यों नाच रहे, लगता है उन्होंने कोई चरस या गांजा या नशा किया है, ड्रग्स लिया हुआ इसलिए शायद इस प्रकार नाच रहे हैं, तो इस वजह से कंसीव नहीं कर पाते इस चीज को। तो इसलिए एग्जाम्पल यहां पर दे रहे हैं। फाइनल टू रेफरेंसेस, एनी पर्सन डेवलप इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिवोशनल सर्विस डज नॉट केयर अ फिग और एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम रिलीजियसनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन और फाइव काइंड्स ऑफ लिबरेशन। It stated that his personal attendants and maid servants of queen follow the queen with all respect and obeisances. Similarly, the joys of religiousness, economic development, self gratification, liberation follow devotion to the Lord. इसे बील मंगल ठाकुर भी यही कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष और सिद्धि वगैरह जो है द्वार पे क्या खड़ी है, हाथ जोड़ के खड़े हैं उसे, बोल तो वहीं खड़े रहो, अंदर मत घुसना, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। तो वहां पर वो डोर कीपर्स की तरह खड़े हैं लेकिन अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बीरमल ठाकुर कह रहे हैं मैं बस व्यस्त हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो जब शुद्ध भक्ति में लग जाता है, जब उसको इतना आनंद मिलता है, तो आसपास अगर आकर्षण है भी उसका उसका आभास तक नहीं होता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पोजीशन। इस स्टेज में जब व्यक्ति पहुंच जाएगा वो संसार का नहीं रह जाता है, वो फिर वो शुद्ध सत्व की अवस्था में फिर जब शरीर छोड़ता है निश्चित रूप से वो धाम जाता है। कंक्लूजन क्या है इसका? ओनली डिवोशनल सर्विस इज ऑल अट्रैक्टिव, all beneficial, can develop saintly character and can bestow superior happiness. Thus, only devotional service is truly all auspicious. ये भी हम विराम देते हैं। बाकी और लक्षण जो है भाव भक्ति के और प्रेम भक्ति के हम अगली बार लेंगे। टाइम क्या हुआ? कोई बात अगर क्लियर ना हुई तो बताइए। अभी तक आपके एनओडी पढ़ा है इंग्लिश में? इंग्लिश में पढ़ा है ना डिवोशन? नहीं। तो अगली बार आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आज के बारे में, तो प्लीज पढ़ के आइएगा, ठीक है? पेज नंबर 4 से या 3 से शायद पेज नंबर 12 तक। देखिए ये ग्रंथ अगर आप जितना अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ये ग्रंथ अच्छी तरह समझ लेगा और उसका अभ्यास करेगा और निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। वो वास्तव में प्रभुपाद कहते हैं जगह पर कि जो इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है गंभीरता से, वो वास्तव में श्रील रूप गोस्वामी के संग कर रहा है। इफेक्ट
है। हाँ, यू सेड दैट बाय भक्ति वी विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रारब्ध कर्मास। प्रारब्ध कर्मास और पाप भी होता है पुण्य भी होता है, और कृष्ण कहते हैं व्हेन यू डिस्ट्रॉय ऑल द पाप एंड यू हैव पुण्य देन यू एंटर इनटू भक्ति।
नॉट दैट काइंड ऑफ पुण्य, नॉट मटेरियल पायटी। बाय मटेरियल पायटी यू कैन नॉट एंटर डिवोशनल सर्विस। सुकृति 3 प्रकार की होती है। एक सुकृति होती है उसको कहते हैं कर्म उन्मुखी सुकृति, मेटीरियल पार्टी, और एक होता है ज्ञान उन्मुखी सुकृति, जिससे आपको ज्ञान हो जाता है कि संसार दुखाले है और आपको संसार से आप अनासक्त हो जाते हैं ये समझ के कि संसार नश्वर है। इस प्रकार का जब ज्ञान हो जाता है उसको, इस सुकृति को कहते हैं ज्ञान उन्मुखी सुकृति। ये भी आपको भक्ति में नहीं ला सकता। भक्ति में आपको क्या लाता है, शुद्ध भक्ति में क्या लेकर आता है? भजन उन्मुखी सुकृति, इसको अज्ञात सुकृति भी कहते हैं, अनजाने में की गई भक्ति, अनोइंगली आपने सेवा की है, भक्ति की है, प्रसाद ले लिया कहीं पे, या संकीर्तन में भाग ले लिया, या संकीर्तन जा रहा हुआ अप्रिशिएट किया आपने, है ना, भगवान का सुंदर चित्र देखकर या विग्रह का दर्शन करके। जैसे कई लोग आते हैं मंदिर में, टूरिस्ट आते हैं, वो नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, वो परम भगवान ही नहीं जानते, पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं, श्रृंगार को अप्रिशिएट करते हैं, कीर्तन चल रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो उस अज्ञात सुकृति संचित कर रहे हैं, और ऐसी अज्ञात सुकृति जब संचित होने लग जाती है तो वो जो है श्रद्धा को जन्म देती है, और ये जो ये अज्ञात सुकृति है जो श्रद्धा को जन्म देती है, ये श्रद्धा शास्त्र के आधार पर है। इस श्रद्धा के स्तर पर जब पहुंचता है तो वो समझ पाता है कि कृष्ण परम भगवान है, तब धीरे 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 फिर साधु वैष्णव की कृपा होती है तो साधु संग भी उसको प्राप्त होता है, ठीक है? और वो सुकृति भी वास्तव में भक्तों की कृपा से हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अज्ञात सुकृति भी मिल रही है तो वो भी भक्तों की कृपा से उसको मिलती है। हमने बताया ना साधन भक्ति की स्टेज पर पहले ही जो है पहला जो है एटलीस्ट हमें ये अनुभव होने लग जाता है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड नॉट द मास्टर, ये साधन भक्ति की अवस्था में होता है। हाँ, प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, नाम का भाव जब होता है रुचि के स्तर पर।
हाँ,
तो साधन भक्ति से थोड़ा सा साधन भक्ति की अवस्था में भी रुचि के स्टेज आता है। रुचि और आसक्ति तक तो आप साधन भक्ति में ही है ना। आसक्ति से वास्तव में आप राग मार्ग की तरफ बढ़ते हैं या भाव भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजिशन पीरियड भी होता है ना। तो साधन भक्ति निष्ठा के स्तर पर जब पहुंचते हैं तो आपको रुचि का आभास होने लगता है, नामाभास का आभास होने लगता है। जैसे आप समझ लीजिए यहां नामाभास चल रहा है और आप दूसरे कमरे में है, वह अंधेरा है, तो आपको आवाज तो आ रही है ना इस कमरे से। आप इस कमरे में प्रवेश नहीं किए लेकिन साथ वाले कमरे में है, तो इस समय जल्द ही आप इस कमरे में आ जाइए, क्योंकि लगा रही इधर ही है, खिड़की में से नजर आ रहा है, तो इधर क्यों निकलता हूं, इधर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से नामाभास के स्टेज में आते ही आपके संपूर्ण प्रारब्ध नष्ट हो जाए। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलो। एस यू सरेंडर भगवान ये भी कह रहे हैं गीता में, आई शैल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली, ये भी गीता भगवान ने कहा। भगवान ये बता रहे हैं जिस तरह से ब्रजवासियों ने शरणागति ली उस तरह से आप शरणागत हो। सर्व धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज, व्रज जिस शब्द आया इसका अर्थ है कि व्रजवासियों ने जिस प्रकार से मेरी शरणागति ली है उस प्रकार से अगर आप शरणागत होते हैं वो लेवल ऑफ सरेंडर होना चाहिए। माम एकम शरणम व्रज है ना, सरेंडर लाइक दी व्रजवासी, अलग वो मूड सरेंडर का लेवल होना चाहिए इतना, लेकिन नहीं है तो एज यू सरेंडर आई शैल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली। हाँ, अब श्रद्धा के लेवल पर है तो उतना रिवॉर्ड मिलेगा, साधु संघ के लेवल पर है तो उतना रिवॉर्ड मिलेगा, भजन क्रिया के लेवल पर है तो उतना अवार्ड मिलेगा। इस तरह से आपको अवार्ड मिलता ही जाएगा हर स्टेज में, ठीक है ना। अब फुल सरेंडर करेंगे तो फुल रिवॉर्ड मिलेगा, देन विल गो बैक होम बैक टू गॉड। तो यहाँ पे कुछ सिद्धियों के बारे में बता दें आपको, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है तो इससे हमारा समय बचाएगा अगली बार। अनिमा सिद्धि मतलब क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई छोटा से छोटा हो जाता है और वो पत्थर में भी प्रवेश कर जाता है, जैसे टनल्स देखे ना आपने पहाड़ों के नीचे से गुफा, आप उड़ीसा जाएंगे ना या बंगाल जाते हैं तो बीच में झारखंड के जंगल आते हैं, वहाँ बहुत सारे गुफा है, ट्रेन उसके नीचे से जाता है, देखा आपने गुफा बहुत आते वहाँ, तो टनल्स हैं, वो तो अनिमा सिद्धि है फिर तो, इसलिए योगी बनने की क्या जरूरत है, वैसे ही लोग केव्स बना चुके हैं, अनिमा सिद्धि। और उसके बाद यहाँ बताया है महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि है शायद, महिमा सिद्धि नहीं महिमा सिद्धि है। महिमा सिद्धि में क्या होता है, व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है कि वो हवा में फ्लोट करने लगता है, जैसे जमीन पर आप बैठे ना जैसे इस आसन में, तो यहीं से आप उठ जाएंगे ऊपर। एक बार किसी ने दिखाया था बहुत साल पहले इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में कहीं हुआ था, कुछ योगी लोग आए हैं पेपर में दिखाया कि जमीन से ऊपर उठ गए वो, है ना। तो ये पॉसिबल है इस सिद्धि के द्वारा और इसको महिमा सिद्धि कहते हैं। और उसके बाद है तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ ज़्यादा योग सिद्धियों के चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आजकल हवाई जहाज आ ही गए हैं, प्लेन टिकट लो उड़ जाओ, हमें उसकी योगी बनने की आवश्यकता है। पानी से भी हल्का हो जाता है तो पानी में चल सकते हैं, तो नाव में बैठ के चले जाओ। प्रभुपाद के साथ बहुत जानते ना आप, प्रभुपाद के साथ कुंभ में नहीं हुआ था और कहीं था, किसी ने बताया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद एक योगी है 25 साल से उसने योग तपस्या की है और वो पानी में चल सकता है। प्रभुपाद ने कहा अच्छा, तो प्रभुपाद ने कहा हम नाव पकड़ते हैं, उसको पैसा दिया 5 रुपया और नाव के इस पार चले गए। प्रभुपाद कहते इतनी आसानी से हम इधर आ गए, है ना। और तो 25 साल उसने लगाया चलने के लिए, 5 रुपए रखा जो है 5 मिनट में हम इधर आ गए। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो केवल नदी पार करा रहा ना, मैं तो तुम लोगों को भवसागर पार करा रहा तो वो भी खुद ही पार कर पा रहा है, दूसरों को नहीं ले जा सकता वो। तो लघिमा, इस तरह लघिमा सिद्धि है, कोई अपनी योग सिद्धि के द्वारा सूर्य ग्रहण में प्रवेश कर सकता है, सनशाइन के द्वारा, सूरज की जो किरणें हैं चंद्रमा की किरणों के द्वारा। और इस तरह से प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि में क्या होता है कि यहां रहकर कोई चंद्रमा को छू सकता है या बैंक ऑफ टोक्यो से पैसा निकाल सकता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकाल सकता है, जहां भी पैसा रखा हाथ बढ़ाओ और निकाल। प्राप्ति सिद्धि में देखा ना, जैसे वो एक हाथ में सेब आ जाता है, हाथ में कई बार गोल्ड चेन आ जाता है साई बाबा का, जैसे तो उसकी पोल खोल दी थी ना उसने पीसी सरकार ने, तो जब उसने निकाला कुछ सोने का चेन निकाला तो पीसी सरकार ने संदेश निकाला हाथ से, तो वो कुछ निकाल रहा था तो पीसी सरकार भी कुछ निकाल रहा था, तो फिर वो डर गया तो अपने लोगों से कह के उसको वहां से भगाया, क्योंकि वास्तव में उन दोनों ने एक ही जगह से सीखा है। तो पीसी सरकार को तो जब पहले जब आने लगे तो उनको आने से मना कर दिया, तो बाद में वेश बदल कर आया था वो, तो बाद में फिर भगा दिया। तो प्राप्ति सिद्धि इस तरह से प्राप्ति सिद्धि है, और इशिता सिद्धि है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ग्रह की रचना कर सकता है, ग्रह का निर्माण कर सकता है और ग्रह को नष्ट भी कर सकता है। कर्दम मुनि ने किया था ना देवहूति के लिए, उन्होंने एक ग्रह बना दिया अलग से, कर्दम मुनि ने, उसको इशिता सिद्धि कहते हैं। वशिता सिद्धि मतलब आपको कोई भी अपने वश में कर लेगा और आपसे जो बुलवाना है बुलवा भी सकता है वो, आपको बोले खड़े हो जाओ खड़े हो जाओगे, बोले बैठ जाओ बैठ जाएगा, इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म कहते हैं। तो हिप्नोटिज्म तो आजकल है, हिप्नोटिज्म एक आर्ट है। और एक सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि का मतलब ये है कि जो इच्छा होती है वो प्राप्त कर जाता है, मतलब पानी जो है आंखों में डाल लेगा और आंखों से पानी निकाल लेगा। जैसे उसको बोरी बांधने के लिए कहेगा बोरी मुझे बांध दो और समुद्र के नीचे फेंक दो, और कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाएगा। तो जो इच्छा है उसकी वो कर सकता है। एक सिद्धि है कामावशायिता सिद्धि, लेकिन ये जो प्राकाम्य सिद्धि है ये नेचर के विरोध में नहीं जा सकता, कुछ भी कर सकता हो लेकिन विद इन द स्कोप ऑफ नेचर। लेकिन कामावशायिता सिद्धि जो है वो नेचर को भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकता है, यानी कि अभी ठंड का मौसम है तो गर्मी ला सकता है, गर्मी के मौसम में ठंड कर सकता है, जैसे एसी में हम करते हैं, एसी के द्वारा हम करते ही है, लेकिन वो नेचर में कर देता है। हिरण्यकश्यपु ने ऐसे ही किया ना, उसने पूरे जो लॉ नेचर के लॉज है वही बदल दिए उसके सारे। ठंड के मौसम में आम निकलने लगा, गर्मी के मौसम में सेब निकलने लगा, अब तो सेब मिलता ही गर्मी के मौसम में मिलता है ना, एयर फ्रेट के द्वारा स्टोरेज के द्वारा। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वेदर चल रहे हैं, तो आप और कंट्री से कुछ भी ला सकते हैं सर, और स्टोरेज सिस्टम से भी काफी हद तक जो है आप रख सकते हैं, तो पॉसिबल है। लेकिन कामावश्यकता सिद्धि में क्या नेचर को कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है व्यक्ति। तो हिरण्यकश्यपु के पास ये सिद्धि थी और ये सबसे पावरफुल सिद्धि मानी जाती है कि नेचर को भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है, कोई नेचर के विरोध भी जा सकता है। तो ये आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। आठ प्रकार की सिद्धि जो है के द्वारा कितना सुख मिलता होगा। देखिए हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा सिद्धि को प्राप्त करके कि आप जो है अब कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये सारी सिद्धियां जो है मेटीरियल है, स्पिरिचुअल नहीं है। इसलिए योगी लोग भी जो है योग साधना के मार्ग में भटक जाते हैं जब सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं, समाधि की अवस्था से पहले वो भटक जाते हैं जब सिद्धियां मिलने लग जाती है। इसे कई लोगों का वाक सिद्धि होती है, वाक स्थिति से जो भी कुछ बोलते हैं ऐसा लगता है यही सच है, बकवास भी करेंगे तो लोग सुनेंगे उनको, होता है कि नहीं। अगर हम इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ से बोल रहे हैं तो ज्यादा लोग नहीं बैठे होंगे, और कुछ भी बकवास करेगा कोई बोलेगा आप सुबह उठ के अपना चेहरा देखो और मुस्कुराओ, है ना। और ज्यादा परेशान है तो आप ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलो, ऐसे से लोग लिखते हैं किताबों में, और वो सेंटली लोग हैं, संत कहलाए जाते हैं ऐसे लोग, लोग मानते हैं उनको फॉलो भी कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो ये इस तरह जो है ना जब हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो श्रील रूप गोस्वामी हमें जो है एक विजन, अच्छा विजन दे रहे हैं कि हम लोग इतने प्रकार के जो सुखों का यहाँ पर वर्णन किया, जो हेवनली प्लैनेट्स का हेवनली प्लेजर्स हैं, हेवनली प्लेजर्स क्या क्या प्लेजर्स हैं, वहां पर शोच क्रिया की आवश्यकता नहीं है, हेवनली प्लैनेट्स में, वहां जो भी खाते हैं ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इमीडिएटली, लंबी आयु है वहां पर, बुढ़ापा लगभग ना के बराबर है, बुढ़ापा होता ही नहीं वास्तव में, बीमारी भी आती है तो एक हवा के झोंके की तरह, वहां तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अश्विनी कुमार, एकदम ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई असुर भी अटैक करेगा तो एकदम ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो एक तरह से इमोर्टैलिटी की तरह एक आपको अनुभूति होगी, अमर होने की अनुभूति मिलती है वहां पर, तो ऐसे स्वर्गलोक को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा वहां पर, अगर स्वर्गलोक का वर्णन किया जाए विस्तार से तो, है ना। तो इसलिए नाना प्रकार के सुख हैं, नाना प्रकार के सुख के तरीके हैं, लेकिन श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं जब शुद्ध भक्ति का वर्णन किया जाता है तो शुद्ध भक्ति के सामने ये सारा जो सुख है वो तुच्छ हो जाता है। इसलिए हमें वास्तविक आनंद की तलाश करनी चाहिए जो कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही संभव है, और हमें सांसारिक सुख में नहीं फंसना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, ये विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।